أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے عافیت کی خیر کی شروع کرتے ہیں. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزء 18 دور قرآن 2024 قد أفلح. اور اس میں سے ہم جو پچھلے پارے کے ساتھ اب اپنا ربط محسوس کریں گے وہ کیا ہے؟ پچھلے پارے میں اتمام حجت تھی. اللہ تعالیٰ نے 13 سال کے صبر کے بعد اور اس کے اوپر تکلیفوں کے اوپر جمے رہنے کے بعد جو صحابہ کو حکم دے دیا تھا وہ ہم پڑھ چکے. آج اس بارے میں اسلامی معاشرے میں اسلام کے نفاذ کی باتیں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ربط رکھا ہے؟ اس دفعہ جو اس موضوع نصر من اللہ کی روشنی میں مجھے قرآن سمجھ آ رہا ہے، میں آپ سب کے سامنے کنفیس کروں گی کہ یہ سوچ اس سال جو مجھے قرآن کے ربط کو محسوس کرنے میں ملی ہے یہ پہلے نہیں تھی. ٹاپک بہت سے ہیں لیکن اب مجھے سمجھ آئے کہ قرآن کا مقصد بھی تو یہی تھا نا کہ نصر من اللہ و فتح قریب. اور قرآن کو جب آپ اس کے اس سنیریو کے اندر جان کے سمجھتے ہیں نا جس کے لیے اترا، یعنی مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ ٹاپک بھی الہامی تھا جو اللہ نے ہمیں دیا. اور کس طرح یہ حالات سے ریلیٹ کرتا ہے؟ آج امت مسلمہ کے اندر جو کچھ حالات ہیں کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. تو آپ پچھلے پارے میں کیا کر چکے ذرا سا میرے ساتھ ذہنی طور پہ چلے تاکہ مجھے بھی خوشی ہو کہ 13 سال کی حجت پوری ہو گئی. مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے. اب آج اس بارے میں کیا ہے کہ مدینہ نام کی وہ بستی ہو جس کو آپ ریاست مدینہ کا ماڈل بنا لیں، یا پھر آج کے وہ 100 کے قریب مسلمان ملکوں کے نام لے لیجئے جس کو آپ اسلامک کنٹریز کہتے ہیں، اب اس کا اگلا مرحلہ. اور وہ اگلا مرحلہ کیا ہے کہ تم نے یہاں اسلام کو نافذ کرنا ہے. نفاذ اسلام کہہ لیجئے آپ اس میں. ایمان والوں کے بارے میں اللہ نے 3 دفعہ اس بارے میں پکارا ہے آپ کو، سورت نور 27, 27 اور 58 میں. اور جو پیغام ہے امت مسلمہ کے نام اس بارے میں وہ ہے انقلاب. آپ نے بھی یہ نعرے سنے ہوں گے لیکن سیاستدانوں سے سنے ہوں گے اپنی کمپین کے دوران، ہم انقلاب لا دیں گے، ہم مہنگائی ختم کر دیں گے، ہم برائیاں ختم کر دیں گے، ہم سڑکیں بنا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے. لیکن وہ مراحل نہیں پتا، بعد میں نہ جانے کیا ہوتا ہے. تو مقاصد شریعت کا نفاذ یہ 18th پورے پارے میں آپ دیکھنے والے ہیں. ابھی اگر میں یہاں کھڑے کھڑے آپ کو بتا دوں تو ہم اس بارے میں چونکہ 2 سورتیں کریں گے نا، پہلی سورت جو ہے نا سورت مومنون ہے، یہ کردار سازی ہے. پہلی ہی 10 آیتوں میں ہم آگے جا کے دیکھنے والے ہیں. یہاں ساتھ چلیے شریعت کیا کہتی ہے، یعنی اب آپ کو میں پہلے ٹاپک تو سمجھاؤں نا، مقاصد شریعہ کیا ہے، شریعت کا مقصد کیا ہے. پہلی تو بات ہے کہ شریعت، شرع اردو میں آپ نے سنا ہے اور کراچی والے تو جانتے ہی ہیں شارع فیصل ہائی وے کو کہتے ہیں. آپ کے ادھر بھی بہت ساری روڈز ہیں نا، A6 ناروے والے. یہ جو شرع ہوتی ہے نا، شیر شرع شرع، یہ حفاظت کے لیے ہوتی ہے، سیکورٹی دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے جو شریعت دی ہے نا اس میں 4 چیزوں کی گارنٹی دی ہے مسلمانوں کو، اور جو بھی اسلام پہ آئے گا اس کو یہ سیکورٹی ملے گی. ہر ایک جس ملک میں بیٹھا ہے اس کو ذہن میں لائے، ہر حکومت اپنے شہریوں کو کچھ حقوق دیتی ہے، رائٹس کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا. اب وہ کسی بھی ملک میں رہنے والے شہری جو ٹیکس دیتے ہیں یا اس گورنمنٹ کے اندر آتے ہیں تو ان کو کیا گارنٹی دی جاتی ہے کہ آپ کی جان کی حفاظت ہوگی، قتل نہیں ہوں گے، آپ کا مال سیکیور ہوگا، ہم اپنے ملک میں ایسا نظام کریں گے کہ لوگ کسی کا مال ناحق نہ کھا سکے. ایسے ہی ہے نا، بالکل اسی رول کو سامنے لائیے. یہ پوری دنیا ایک ملک ہے اور اللہ کا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ تعالیٰ نے بھی پوری دنیا کے انسانوں، یاد رکھیے صرف مسلم لاز نہیں ہے، ये है असल में ह्यूमन राइट्स, ये है यूएनओ। और जिस दिन यूएनओ का ये बायलॉ बन गया, ये सारे रूल्स और रेगुलेशन कुरान ने आपको दिए हैं, इस्लाम ने दिए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की छोटी सी स्टेट में, ना उनके पास उस वक्त तेल था, ना उनके पास बड़े बड़े वेपन्स थे, और ना उन्होंने इसका इंतजार किया। हम ये रोते रहते हैं ना कि पहले कुछ अच्छा हो ले तो फिर करेंगे। कल रात इधर एक सिर्फ 5 मिनट का मैसेज था मस्जिद में, कोई ब्रदर आए हुए थे ब्रिटिश से, तो उन्होंने एक ही मैसेज दिया कि सीरत दिखाती है कि बड़े बड़े रिसोर्सेज या हुक्मरान कुछ करें, इसका इंतजार नहीं किया था लोगों ने। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, जो है उसको लेके चल पड़ी। आप अपने वन ऑन वन बेस पे आज गजा के अंदर अपनी आवाज उठा सकते हैं तो उठाइए, लेकिन जो अक्सर बात की जाती है ना कि खून आलूद वीडियोस ना भेजें, उसकी एक वजह है, यानी काम वो कीजिए जिससे दूसरों को फायदा हो, दुश्मन का नुकसान हो और उम्मत मुस्लिमा का फायदा हो। एग्रेसिव होना और रिएक्शनरी होना, बाद में फिर वो सारी चीजें बंद हो जाती हैं, फिर आप पे पाबंदियां लगती हैं, आप पे सेंक्शंस लगती हैं। तो पुरमन तरीके से आप पहले तो दुआएं कर सकते हैं, और बहुत कुछ है जो एक मौजू अलग होगा। तो इस मकासद शरिया में चार चीजें हैं, हर शख्स के जान माल इज्जत की हिफाजत हो, यानी इज्जत की हिफाजत, नस्ब की हिफाजत, जान की हिफाजत और माल की हिफाजत। चलिए माल की हिफाजत से बात शुरू करें, तो सूरत मायदा में आपने क्या पढ़ा, वस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तौ अयदियहुमा, चोर और चोरनी, उनका वो एक हाथ, दोनों हाथ नहीं, अईद वाहिद की लफ्ज़ बात हो चुकी है इस पे। अल्लाह ने मुसलमानों की नहीं, इंसानों की, देखिए याद रखिए मकासद शरिया ह्यूमन बेस्ड है, मुस्लिम बेस्ड नहीं है। आपके मुल्क में अगर कुछ नॉन मुस्लिम भी रहेंगे तो उनकी भी जान माल की हिफाजत होगी। मुसलमान ज़कात देते हैं तो वो जिजिया देंगे, सूरह तौबा में हम पढ़ चुके हैं। तो माल की हिफाजत के लिए चोरी की सजा है, जान की हिफाजत सूरह मायदा में कत्ल के बदले कत्ल, तीन कत्ल जायज़ हैं और तीनों हुकूमत के हाथ में है। कोई किसी को कत्ल कर दे, कोई शादीशुदा औरत जिना कर दे, मर्द जिना कर ले, या फिर तीसरी बात यह है दीन को मानकर छोड़ गया, मुर्तद हो गया। जरा वो तो एक ऐसा फितना बन गया है कि वो जिधर जाएगा वहां ग्रो करेगा और कोरोना वायरस से ज्यादा खराबियां पैदा करेगा। अल्लाह ताला ने जान की हिफाजत में सजा रख दी कत्ल की, और मैं आप नहीं कर सकते, गैरत के नाम पे खान साहब नहीं कत्ल कर सकते किसी मर्द को जिसको अपनी बीवी या बहन के साथ देखा। कानून को हाथ में लेने का इख्तियार नहीं है, ये लिखिए बड़ी बात। आज सारी जुबानें बंद हो जाएंगी अगर ये बात समझ आ गई कि हम कानून हाथ में लेते हैं कई दफा। आज अगर हुक्मरान नहीं करे, ये उनकी जिम्मेदारी है, हाँ हमें उसके बीच की सीढ़ियां बनना है। बहरहाल एक लंबा टॉपिक है। अब आगे रह गई दो हिफाजतें, एक है नस्ब की हिफाजत और एक है इज्जत की हिफाजत, ये दोनों आपको आज के बारे में मिल रही हैं। अल्लाह ताला ने जिना की जो हद रखवाई है, वो इसलिए रखवाई कि तुम्हारी जान, तुम्हारे घरों में जो बच्चा पैदा हो उसको पता हो मेरा बाप कौन है, मेरी दादी कौन है, मेरी फुफ्फो कौन है, मेरा चचा कौन है, और दूसरी तरफ फिर नानी मामू खाला, वो तो पता ही होता है। आज आपको जितनी सिंगल मदर्स दिख रही हैं दुनिया में, कभी इतनी दुनिया में नहीं थी। एक पूरे पारे के अंदर मेरे दिमाग में एक चीज मौजूद है कि सिंगल मॉम्स पे बात करनी है, यहाँ ना भी की ना तो अगली जगह में करनी है, आगे इसी रमजान में ही करूंगी। इतना बड़ा डायलमा है आज। आज ये जो दुनिया, इसका हाल क्या कर दिया हम लोगों ने, बिगाड़ के रख दिया। अल्लाह ने हमें ब्रांड न्यू दुनिया दी थी, लेकिन जहर अल फसाद फिल बर्री वल बहरी बीमा कसबत अयदी अन्नास, और इज्जत की हिफाजत के लिए हद कज़फ है। आज हम इस पारे के अंदर सूरत नूर में ये दोनों हिफाजतें पढ़ेंगे, फिर वहां जाके कुछ और मजीद बातें करूंगी क्योंकि वहां इतने सामने खुली होंगी। और नस्रु मिनल्लाहि व फतहुन करीब, और मुझे है हुक्म आजाद, दोनों पे मैं आज एक जुमला बोल देती हूँ पूरी दुनिया के इंसानों के लिए, एक जुमला। जब तक मुसलमान पूरा मुसलमान नहीं बनेगा, और जब तक मुसलमान हुक्मरान पूरा इस्लाम नाफिस नहीं करेंगे, चाहे वो सऊदी अरब हो, मैं नाम लेके बोल रही हूँ, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो दुनिया के और इस वक्त जितने मुसलमान मुल्क हैं, उनको अल्लाह की मदद नहीं मिलेगी। दो जुमलों में खत्म, पारा जाइए, सो जाए जाके घर पे। किसी ने एक कोना पकड़ा हुआ है, किसी ने दूसरा पकड़ा हुआ है, कोई बीच का पेट है। जैसे कहते हैं ना, एक बड़ी मशहूर पोएम है कि नौ अंधे थे और किसी शहर में रहते थे, खबर आई कि एक हाथी आ गया शहर में, लोगों ने कभी हाथी नहीं देखा था, लोग शौक में हाथी देखने के लिए गए और सब देख कर आ गए। बाद में बैठे तो पूछा कि सुनाओ हाथी कैसा होता है। अब वो अंधे थे ना, किसी का हाथ हाथी की टेल पे पड़ा, किसी का पेट पे पड़ा, किसी का कान पे पड़ा। अब हर एक अपने तौर पे सुना रहा है। किसी ने कहा हाथी तो रस्सी की तरह होता है क्योंकि दुम हाथ है। किसी ने उसके कान को पकड़ा, उसने कहा हाथी वो तो गोभी के पत्तों की तरह होता है। किसी की उसके पेट पे हाथ पड़ा, उसने कहा हाथी तो ढोल होता है। इस पे कहते हैं कि ऑल वर राइट बट ऑल वर रॉन्ग। पार्शली वो सब ठीक कह रहे थे लेकिन ओवरऑल वो गलत है। आज हमने ये जो टोटम वाला इस्लाम लिया है ना, सारा मसला ही है। हर एक की कदर करिए। आज इस्लाम के नाम पे जो भी नाम लेके खड़ा हो जाता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सब टुकड़ों वाले। जो जिस घर में जो पैदा हुआ उसको वही तरीका अच्छा लगा। नाम लेके भी कह सकती हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है। जो किसी ऐसे घर में पैदा हुआ कि जहाँ जमात इस्लामी के नाम पर दीन का काम हो रहा था, उनकी नजर में सियासत थी। फिर लोग क्या कहें, हर दर्स के बाद वो सियासत की बात करते हैं तो उसका क्या कसूर है? तो कोई बुरी बात नहीं करते वो बेचारे। कोई तबलीगी जमात वालों के घर में पैदा हुआ तो उसने शुरू से तबलीग देखी। तबलीग करनी, चिल्ला काटना, 3 दिन का, 40 दिन का, तो क्या बुरी बात है? क्या तबलीग बुरी चीज है? कोई जिहाद वाले मिलान वाले घर में आया तो उनको तो बचपन से लफ्ज जिहाद और जिहादी तराने और कत्ल की बातें। तो अगर आज वो आपसे कहते हैं कि आप सब छोड़ के सिर्फ जिहाद की बात करें, वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। जो इनपुट होता है ना वही आउटपुट होता है। आप जो चीज अंदर डाल रहे हैं वही निकलना है। लेकिन अल्लाह सुबहाना ताला ने इस पारे के साथ पिछले को अगर आप जोड़कर ठंडे दिल दिमाग से सोचें, मेरा 100% शरह सदर है इस पे कि अल्लाह ताला ने एक तरतीब दी है, नस्र मिनल्लाह ही व फतहुन करीब की। मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। सबसे कठिन इम्तिहान होगा जब मैं आपको सूरत नूर के मसाइल पढ़ाऊंगी। आज का दौर, इस दौर में डेथ पेनल्टी मना है, इस्लाम इज बारबेरिक रिलीजन, इस्लामी सजाएं ये हैं वो हैं। इंशाल्लाह कभी नहीं डरे ना दुबे, किसी ने क्या कहना है? ज्यादा से ज्यादा कोई क्या लेगा? सर का बोझ ही दूर करेगा ना जिस्म से, तो कर दे। लेकिन मुझे है हुक्म अदा। आज अगर ये बोलते हैं साजे, आज ऐसी बात कहने वाले को लोग जेलों में डाल देते, तो डाल दे। इमाम अहमद जेल में, इमाम इब्ने तैमिया जेल में, जनासे तक इनके जेलों से निकले, यही बातें थी। कुरान मखलूक है के कलाम है अल्लाह का, इस पे जेल में गए। कभी आप सोचा तो करें, कभी आप मुस्लिम हिस्ट्री तो पढ़े। जब तक आपके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो इस जगह पे मत बैठे। ये अधूरा दीन देकर हमने लोगों को आज अजीबोगरीब बना दिया। और आज ईमान की ताकत अल्लाह पर, निफाज़े शरीयत के लिए, चाहे वो पाकिस्तान का कोई मुसलमान हुक्मरान है, या वो सऊदीया का कोई मौजूदा हुक्मरान है, या माजी आला था, या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो आएंगे, जिस ताकत की जरूरत है ना निफाज़े शरीयत के लिए, वो वेपन्स नहीं है, वो ऑयल नहीं है, वो IMF के कर्जे नहीं है, वो ईमान है। जो ईमान वाला आपको अल्लाह ने दे दिया, उस दिन आपके मुल्कों में शरीयत नाफिज हो जाएगी, ये याद रखिएगा। और मुझे किसी का जुमला बड़ा ही अच्छा लगा, बहुत पहले सुना था। उन्होंने कहा कि अच्छे हुक्मरान अचानक मिलते हैं, ये मोजज़ा होते हैं। ये अवाम की बेताबियों का और लोगों की लाचारगियों का इजहार है कि अल्लाह तोहफे में मूसा जैसा कोई भेज देता है, लेने आग देता है, जाता पैगम्बरी मिल जाती है। ये अल्लाह की तरफ से मिलता है, पढ़ के देख लें। मोहम्मद बिन कासिम कोई ट्रेनिंग कोर्स में थे कि मुझे सियासत में चूज करो? कोई उन्होंने पकड़ कर बैनर पकड़ा था कि लोगों को मैं सिंध फतह करा दूंगा? वो तो तालिब इल्म थे। पर लिखिए यहाँ ये बात, जो कुरान वाले होते हैं ना, जो कुरान सीनों में ले जाते हैं ना, वही बेहतरीन मुजाहिद होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई आर्मी नहीं थी। आज अगर इस्लाम पूरी दुनिया में आएगा, और आना है, मेरे आपकी जरूरत नहीं है उसको, ना इतना फिक्र करें, बस अपने हिस्से का काम करें, जिक्र करें, फिक्र नहीं करें। और वो इस्लाम जब आना है ना, तो वो इस रास्ते से आना है जिस रास्ते से मदीना की बस्ती में आया था। 13 साल तक जुल्म, ये जुल्म के साल सह रहे हैं हम लोग। इसमें इस्फिरु वत्तकु तत्तकु, तकवा तो इख्तियार करो। नमाजें तुम्हारी ठीक नहीं है, कपड़े तुम्हारे पूरे नहीं है, तुम पूरी शरीयत कहाँ से लाओगे? दुनिया का माल का बुत तुम्हारे दिल में बैठा है, बाहर के बुतों से क्या होता है? तो बाहर आली इस पे तो फिर जितना मर्जी बुलवा लीजिए। ये तो वो मौजू है कि जिसको समझ आ जाता है उसका तो सीना उबलने लगता है। शुक्र करें हमें नहीं पता ज्यादा। तो निफाज़े शरीयत की आज बातें बारे में आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। फिर इसी तरह से इनकलाब लाना है, इनकलाब के दावे। आपको पता, दुनिया का सबसे मशहूर इनकलाब फ्रांस का है। फ्रांस और पेरिस की हिस्ट्री पढ़कर देखिए, खून की नदियां नालियां बह गई थी। कितना नुकसान हुआ कि एक शख्स ने उस पर कहा कि जब वो इनकलाब आया तो उनके पास अपने चिरागों में जलाने के लिए तेल के पैसे नहीं रहे थे, कंगाल हो गया था ये मुल्क बिल्कुल खाली कासे की तरह। और अल्लाह के नबी ने जो इनकलाब दिया, ये सन 8 हिजरी में मक्का फतह हो रहा है, एक खून नहीं बहा, एक गोली नहीं चली, पुरमन इख्तलाह, आपने अल्लाह से हिकमत मांगी थी कि अल्लाह मेरे जाने की खबर ना किसी को देना, अचानक जाऊंगा ताकि इस शहर की हुरमत पामाल ना हो। हाते बिन अभी बलता ने खत भी लिख दिया, अल्लाह ने रास्ते से पकड़ लिया। आप अल्लाह को क्या समझे हैं? आप समझे ही नहीं है। ये जब हम काम अपने हाथों में लेते हैं ना, फिर गड़बड़ होती है। वो निगाहें अल्लाह पे लगाकर देखिए तो फिर दुनिया में क्या चेंज आती है। फिर तशीउल फाहिशा का तذکرہ होगा सूरत नूर में, उससे आज फहाशी का तूफान बदतमीजी, यानी आज आप कह सकते हैं कि लोगों का एजेंडा इस वक्त दो चीजों पे है, कि फहाशी आम हो जाए, इन हो जाए, और उसको हया से निकाल दे। लेकिन इस बारे में समंदर नहीं, सात समंदर कूजे में बंद करने हैं, जितना आपके मेरे नसीब में होगा उसी पे खुश है। और फिर अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की तरह मस्तों को माफ करना, बेटी पे तोहमत लगा दे कोई क्या आपकी बेटी ने जिना किया है, नाउज़ु बिल्ला, और बाप कह दे कि जाओ मैंने तुम्हें माफ किया, इसके लिए ईमान की जरूरत होती है। हम हर चीज पे अपनी पर्सनल्स पे आ जाते हैं। फिर इसका थोड़ा सा आगे चलिए, अब हम सूरत हज का और सूरत मोमिनून का अगर तकाबुल देखें, पिछले पारे की आखिरी आयतों में उम्मत मुस्लिमा को एक मनहज मिला था, उसमें एक खबर मिली थी कि मैंने तुम्हारा दीन आसान कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए थे तो यहूदे मदीना ने एक इल्ज़ाम लगाया था आप पे, कहते थे ये हर चीज़ को नरम करता जा रहा है, क्योंकि उनके फकीह होने, उनके मुज्तहिदीन ने, उनके उलमा ने, फतवा फरोशों ने दीन मुश्किल कर दिया था, मिनोपली बना ली दीन की। तौरात तो कहीं पीछे रह गई, आज भी जो तौरात पढ़ते हैं वो तौरात थोड़ी है, वो तो उनके किसी लिखे हुए की तफसीर है, तलमूद जिसका नाम है, आपने नाम तो सुने ही होंगे। तो वो दीन को सख्त करते थे, जहां गंदगी लगी कपड़ा काट दो, हैज के दिनों में औरत को घर से अलग कर दो। उन्होंने अल्लाह के दीन को इतना टाइट कर दिया था, जैसे कहते हैं ये भी काट दो, ये भी काट दो, ये भी काट दो, अपनी मनपसंद चीजें रखी। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, हैज के दिन है, औरत पाक है, अल्लाह ने जो चीज से मना की बस वही मना है, बाकी तो खैर ठीक है। ये कहते देखा 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 ये हमारी चिड़ में करते। और याद रखिए, आज जैसे कोई मॉडर्निज्म का नाम लगा देते हैं ना किसी ऐसे दीन वाले पे, जो कहते कोई बात नहीं, दुपट्टा अगर सर से उतर जाए तो इस फाइन, और मैं आप सबको कह रही हूँ उतारिएगा नहीं, आप सारे अपने दुपट्टे उतार के वहां बाहर जाने वाली बास्केट में रख दें, जहां से बाहर निकलना है तो कोई गुनाह नहीं होगा आपको। अब मेरे जुमले पे पता नहीं आपको कितना किसी को रिएक्शन आना है। ये तो मुरव्वत में पहनते हैं, अल्लाह ने हया का तकाजा रखा है, आज अभी पढ़ लेंगे किधर पहनना किधर नहीं पहनना। लेकिन ये बातें सुने, अच्छा हाय कुरान लेट के भी पढ़ सकते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह, कुरान को पीछा कर दिया, कुरान गिर गया तो आटे के नमक के पैसे दे दो इतने, आज तो एक चिप में 50 कुरान है, तो क्या छटाक वजन रह गया आपके कुरान का? पहले तो कोई किलो 2 किलो आटा देते ही होंगे ना किसी गरीब को जब कुरान गिरता था। ये इंडिया पाकिस्तान की मेड इन कुरान है, इस्लाम का कुरान ये नहीं था। तो जैसे आज इन बातों को सुनने वाले कहते हैं ना ये क्या कर रहे हैं, तो नबी के बारे में भी लोग यही कहते थे, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब क्या मिसालें कितनी को दो, इतनी पाबंदियां थी, टूटा नाम तो तकवा का, अंदर सब करते थे, अवाम की जान खींच के रखते थे। आज भी कुछ उलमा ऐसे हैं, हंस नहीं सकते, बोल नहीं सकते, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर, कभी कितना लोगों को ट्रस्ट, खौफ ज्यादा किसी दीनदार को देखना, अल्लाह के बंदो हाय डर लग रहा है, पता नहीं ये कैसे होंगे। एक दफा बड़ी मजे की बात याद आ गई, अब इतना भी आप भी बड़े डरे हुए लग रहे हैं, कहीं हमने जाना था तो वो अपने बच्चे को सरजी से मिलाना चाह रही थी, ऐसी मोहब्बत में इनको भी अच्छा लगता है, अब वो आई नहीं रहा, आई नहीं रहा, आई नहीं रहा, आखिर इनके नमाज पे जाने का वक्त हो गया, ये नमाज पे चले गए, जब गए तो बच्चा आ गया, तो पूछा तुम किधर थे, कहते मैं ऊपर बैठ के कलमे याद कर रहा था, कि सरजी ने तो मुझसे कलमे ही सुनते हैं। मैंने कहा आज मैंने पहली दफा सुना, ये सुना बता कि निकाह के वक्त कलमे पढ़ाते हैं, और कई बच्चे अभी तक इसलिए निकाह नहीं करते कि 6 कलमे नहीं याद हुए। भाई आप चौकीदार हैं, आपने ठेका लिए हुए, अपनी मर्जी से दीन को बदलते हैं, कुरान तो आता खाक नहीं, और अपनी रवायती दीनदारी पे आज हम पड़े हैं। आप असल दीन दे के यू विल एंजॉय द दुनिया, क्या मदर टेरेसा और क्या मार्गरेट और क्या लेडी डियाना और क्या बड़े बड़े नाम लूं, मुझे दो चार ही आते हैं, या आज की नौजवान नस्ल के दिमागों पे जो नाम है ना, वो क्या जिंदगियां गुजारे हैं जो आपकी जिंदगी होगी। आज ये करके देखिए, पूरे गजा से लेके ना पूरी दुनिया के मुस्लिम मुल्कों में एक तरह खाएंगे लोग, ये नहीं कि हम 10-10 खानों का मील लेके इफ्तार करें और वो गरीब आटे और मट्टी के साथ रोजे खोल रहे हैं, फिर ये नहीं होगा। ये जो पूरी दुनिया ना इस वक्त ये अगवा की हुई दुनिया है, मोनोपोली चंद हाथों में पूरे इंसानों का नसीब है, या जिस वक्त हम सारे बींग अ ह्यूमन किडनेप्ड हैं, बींग अ मुस्लिम तो हम स्लेव्स हैं, इससे बुरी स्लेवरी तो तारीख ने कभी ना देखी। तो बहरहाल सूरत हज के बाद अब सूरत मोमिनून का पढ़ना ये बहुत ही बड़ी बात है। पिछले पारे का इख्तिताम हुआ था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उर्कऊ वस्जुदू, नमाज का तो एक ह्यूमन करेक्टर था। इस पारा 18 का आगाज हो रहा है नमाज से मुतल्लिक आयात का, और सूरत मोमिनून के नाम पे एक और बात समझ लीजिएगा कि सूरत बकरा में हमने शुरू में ही तीन गिरोहों का तذکرہ पढ़ा था, पहले ही दो रुकुओं में, और अल्हम्दुलिल्लाह इन तीनों नामों पे सूरतें मौजूद हैं। सूरत मोमिनून उसमें से पहली सूरत है, और सूरत मुनाफिकून 28 पारे में आएगी, और इसी तरह से सूरत बोलिए काफिरून 30वें पारे में होगी। यानी अल्लाह ने तरतीब सही रखी है, हमारी तरतीब कुछ भी हो सकती थी जो होती। फिर इसी तरह से तीनों नामों की सूरतें जो इस कुरान में मौजूद हैं, इसमें से हम इस वक्त सूरत मोमिनून पढ़ने वाले हैं। अब अगर मैं आपको डराऊं तो आप पूछोगे सूरत मोमिनून क्यों है, मोमिनीन क्यों नहीं? ग्रामर वाले तो एक सेकंड में समझ जाएंगे किससे मुराद क्या है, और जो दूसरे नहीं समझेंगे उनको ये क्या आप सुहेल जानना ज्वाइन कीजिए। इतनी को ग्रामर तो आपको हम पढ़ा देते होते हैं कि मोमिनून और मोमिनीन का फर्क पता लगेगा। काम करने वाले, मोमिनून कौन होते? फाइलून, काम करने वाले ही जीतेंगे। हम इस वक्त मोमिनून की जगह मोमिनीन बने बैठे हैं, और फिर ख्वाहिश ये करते हैं कि हमारी सारी बातें जो हैं वो अल्लाह ताला मान ले। अल्लाह ताला मानता है, लेकिन किन की मानता है? जो उसकी मानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत 1 से 22, 1 से 22 में कामयाब मोमिन की सिफात भी हैं, और इसी में इंसान के इस दुनिया में दे दे जाने का तरीका और इंसान का लाइफ स्पैम जो है वो पूरा बताया गया। कदफ लहल मोमिनून, यकीनन ईमान वालों ने फलाह पाई है जो अपनी नमाजों में खुशू करते हैं, जो लगवियात से मुंह मोड़ लेते हैं, और जो जक़ात अदा करने वाले हैं, और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं सिवाय अपनी बीवी और मलकियत की लौंडियों के। यकीनन ये मलामत किए हुओं में से नहीं, जो इसके सिवा कुछ और चाहें वही हद से तजावुज करने वाले हैं, और जो अपनी अमानतों और वादों की हिफाजत करने वाले हैं, जो अपनी नमाजों की निगहबानी करते हैं, यही वारिस हैं जो फिरदौस के वारिस होंगे, जहां वो हमेशा रहेंगे। ये दूसरा मुकाम है जहां जन्नत का हाईएस्ट मुकाम जन्नत अल फिरदौस है, सूरत काहफ, और ये बस इन दो ही जगह पे फिरदौस की बात है। अब यहाँ से इंसान का लाइफ स्पैम यानी उसका व्हील ऑफ लाइफ क्या है, और यकीनन हमने इंसान को मिट्टी के जौहर से पैदा किया, फिर इसे नुतफे से बनाकर महफूज जगह में करार दे दिया, फिर नुतफे को हमने जमा हुआ खून बना दिया, फिर इस खून के लोथड़े को गोश्त का टुकड़ा कर दिया, फिर गोश्त के टुकड़े में हड्डियां पैदा कर दी, फिर हड्डियों को हमने गोश्त पहना दिया, फिर दूसरी बनावट में इसे पैदा कर दिया। और बरकतों वाला है वो अल्लाह जो सबसे बेहतरीन पैदा करने वाला है। इसके बाद फिर तुम सब यकीनन मर जाने वाले हो, फिर कयामत के दिन बिला शुबा तुम सब उठा जाओगे, और हमने तुम्हारे ऊपर 7 आसमान बनाए हैं, और हम मखलूकात से गाफिल नहीं है, और हम एक सही अंदाजे से आसमान से पानी बरसाते हैं, फिर इसे जमीन में ठहरा देते हैं, और हम इसके ले जाने पर यकीनन कादिर हैं। बारिश हो रही हो तो कोई रोक नहीं सकता, और अगर ना हो तो कोई नहीं उसको दे सकता। यही बात अल्लाह ने बता दी कि ये पानी भी मेरे कब्जे में है, तुम बाकी बातों को तो क्या करते हो। इसी पानी के जरिए हम तुम्हारे लिए खजूरों और अंगूरों के बागात पैदा कर देते हैं कि तुम्हारे लिए इनमें बहुत से मेवे होते हैं, और इन्हीं में से तुम खाते भी हो। और वो दरख्त जो तूरे सीना पहाड़ से निकलता है, जो तेल निकालता है और खाने वाले के लिए सालन है, और तुम्हारे लिए चौपायों में भी बड़ी भारी इबरत है, इनके पेटों में से हम तुम्हें दूध पिलाते हैं, और वो भी बहुत से नफे तुम्हारे लिए इनमें हैं, और भी बहुत से मुनाफे तुम्हारे लिए इनमें हैं, और इनमें से बास को तुम खाते भी हो, और इन पर और कश्तियों पर तुम सवार कराए जाते हो। कैसा फ्लो है, कितना रिदम है इस कुरान में। ईमान से मुतल्लिक बस एक ही आयत है, लेकिन उस एक आयत के अंदर सब कुछ छुपा हुआ है। कदफ लहल मोमिनून, कामयाब मोमिन वो है जिसका नाम मोमिन हो, जिसके मजहब के खाने में मुस्लिम लिखा हो, नहीं, कामयाब वो है जो अपने रब को राजी कर ले, और जो रब को राजी करेगा उसको फिरदौस मिलेगी, क्योंकि उसकी छत रहमान का अर्श है। बस ये है दो लफ्जों की कहानी। आज के बाद कभी कोई आपसे पूछे कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, नमाज रोजा हज ज़कात नहीं, रब को राजी करना, घर की जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए भी, और अल्लाह की दी हुई जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए भी। जैसा कि इस पारे का थीम आपने काफी समझ लिया, हमारी शरीयत अदल और हया का मजमुआ है। यानी अल्लाह कहते हैं किसी पे जुल्म ना हो, और दूसरी बात है कि लोग बेहया ना हो, वो जानवर ना बने। आपने पहले ही रुकू में देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 खूबियां देख ली। ये है किरदार मतलब, ये है वो किरदार के जिसके लिए हजरत आयशा ने फरमाया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इन आयात से मिसल थे, नमाज में खुशू करते। और आप इस वक्त आंखें बंद करके अपने बारे में सोचें, किसी को ना सोचें। क्या आज इस्लाम को गालिब हो जाना चाहिए? क्या इस वक्त इनकलाब आ सकता है? ये इनकलाबी नुक्ता है। माएँ अपने बच्चों में, दादियाँ अपने पोतों में, नानियाँ अपने नवासों में ये खूबियाँ पैदा करें, और बीवियाँ बिगड़े हुए शोहरों को ठीक करने की कोशिशें करें। जब किसी मुआशरे के मर्द और औरतें इन आयात से मिलते हुए मैचिंग हो जाते हैं ना, तो इनकलाब आ जाता है। और नबी का ये इनकलाब था। शराब हाथ के अंदर आई भी छुटी थी। दौरे जाहिलियत की महबूबा मरसद को रात की तन्हाइयों में चांदनी रात में बुलाती है, कौन सा मर्द है जो बचेगा? और हो भी वो महबूबा गर्लफ्रेंड, कद अफलहल मोमिनून। आज ये नजरों में हया भरने की जरूरत, बेटों के शोहरों की नमाज में खुशू, लघवियात से मुंह मोड़ता है। हमारी तो सुबह ही शुरू होती है तो खबरों के नाम पे ही सही, लेकिन जो कुछ वो दिखा दिख रहे होते हैं और कुछ नहीं, तो एडवर्टाइजमेंट से जरा गौर कर लीजिएगा। और जो ड्रामे फिल्में जो बड़े आते हैं घरेलू ड्रामे, जरा उसमें हीरो हीरोइन और उनके बाकी किरदार ही देख लीजिएगा। याद रखिए, जब लघवियात मुंह में, आंखों में, कानों में, हाथों में होंगी तो कुरान असर नहीं करेगा। मैंने मस्जिदों में बैठी बच्चियों को अजीबोगरीब चीजें देखते हुए देखे, फोनों पर, ऊपर तिलावत चल रही होती है, तरावी हो रही है, वो पीछे बैठी फोनों से खेल रही होती है। ज़कात अदा करना, और ये सारा कुछ आप खुद ही पढ़ लें, मुझे क्या बताना है कि जरूरत है? ये युहाफ़िज़ून तक तो हमने जो पढ़ा है ना, नमाजों की निगेबानी है ना, तो मिन खशयति रब्बिहिम मुशफिकून, रब की हैबत से डरने वाले, ला युशरिकून, रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते, और इला रब्बिहिम राजिऊन, बिल आखिर अपने रब की तरफ ही लौटने वाले हैं। यहाँ खुशूक से बात शुरू हुई है। अगर आप देख रहे हैं, कद अफलहल मोमिनून से बाद ईमान का पहला तकाजा नमाज, और शुरू में नमाज खुशू वाली ना भी हो ना, तो याद रखिए बाद में यू हाफिज उन तक पहुंचती है। नमाजों का अजर खुशू की कैफियत से नापा जाएगा। ज्यादा खुशू वाली नमाज आपके नामे अमाल में ज्यादा नंबर देगी, और कम खुशू वाली नमाज कम नंबर देगी। वुजू करते ही गुनाह पत्तों की तरह झड़ने लगते हैं, जैसे खिजां के मौसम में दरख्तों से पत्ते गिरते हैं। आज हम में से नमाज के मौजू पे ही चार मसलक तो हमारे अपने मुल्क में मौजूद हैं। नमाज में हाथ कहाँ बांधो, सजदा ऊंचा करो कि नीचा करो, औरत की नमाज और मर्द की नमाज का फर्क। लेकिन इस पे कभी कम ही बात देखी है कि कौन खुशू से नमाज पढ़ता है और कौन नहीं पढ़ता। तो याद रखिए कि नमाज के दो खुशू होते हैं, एक जाहिरी, इसमें लिखिए सल्लू कमाराई तुमोनी उसल्ली। अल्लाह के नबी ने हाथ उठाए तो आप उठाएंगे। आप क्यों अपनी जान पे इतना बोझ लेते हैं कि नहीं हम नहीं उठाते क्योंकि हमारे इमाम नहीं उठाते थे? भाई इतनी हदीसें, 47+ हदीसें हैं बुखारी में। अल्लाह के नबी नमाज में अल्लाह अकबर कहते थे शुरू में, फिर रुकू में जाते हुए कहते थे अल्लाह अकबर, और फिर इसी तरह से तीसरा मौका जब सजदे में जा रहे थे नीचे। क्या अभी जिद के इसमें आपको नहीं पता था? तो नहीं पता था, अब हदीसें आ गई हैं सामने, खोल के पढ़ लीजिए। ये ज़ाहरी खुशू है तरीका नबवी, नमाज नबवी, और इस पर अल्हम्दुलिल्लाह वेबसाइट पे पूरी बुक पढ़ी, दो दफ़ा पढ़ाइए, वेबसाइट पे दोनों हैं, जाके अपनी नमाजों को उसको चेक कीजिए। इसमें आप में अपनी मर्जियाँ नहीं कर सकते, 19-20 का जहाँ भी फर्क है ठीक है। आप एक मस्जिद में जाते हैं, वितर एक तरह पढ़ा रहे हैं, कोई रुकू से पहले दुआ कनूत करवा रहा है, कोई बाद में कर रहा है, इट्स ओके। लेकिन अब आप रुकू छोड़ ही दें, दो रुकू कर लें, या फिर आप रुकू के अंदर छोटी मोटी ऐसी चीजें चेंज करें जो किसी ने भी नहीं की, तो इसकी इजाजत नहीं है। बातनी खुशू दूसरी चीज है, ये है मिसिंग फैक्टर। यौम यकूमुन्नासु लिरब्बिल आलमीन, अगर आपकी क्याम में ये कैफियत नहीं होती ना, तो आपके अंदर बातनी खुशू नहीं है। देखिए जिस्म और रूह का जो ताल्लुक है ना, वो जाहरी और बातनी खुशू का, जितने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाहरी काम जो नमाज में करते थे वो लाजमी है ना, उतना ही आपका बातनी खुशू भी लाजमी है। और साहबा कहते हैं अल्लाह के नबी जब नमाज में खड़े होते थे तो आपके सीने से खौलती हुई हंडिया की आवाजें आती थी। कि मैं किसके सामने खड़ा। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु करम अल्लाह वजहू, नमाज से पहले उनका भी अमल और उनके पोते का भी मैंने पढ़ा, यानी उन्हीं की नस्ल में ये फिर बात गई। नमाज का वक्त आता था ना तो घबराते थे, उनके बेटे का भी यही होगा, जब बताते का है तो पोते का कहाँ से हो गया, बेटे का भी होगा। रंग जर्द होने लगता था। किसी ने पूछा कि ये आपको क्या होता है, कहा कि मुझे एहसास होने शुरू होता है कि मैं बहुत बड़ी हस्ती के सामने खड़ा हो रहा हूँ। आपको अल्लाह ना करे पुलिस रोक ले तो देखिए, जरा सा इमिग्रेशन पे आपको कहा जरा आप अंदर आए ना, तशरीफ लाइए, आपकी इज्जत करें तो देखिए क्या होता है। हमें तो मार्फत ही नहीं है, मार्फत की कमी है। आप जरा सा सोचें, हमारी नमाजों में खुशू क्यों नहीं, ड्रेस कोड ही नहीं ठीक होता। हमारे कपड़े अगर झुकेंगे तो पीछे से पुश्त खुल जाती है, चौक खुले हैं तो इधर से दिखता है, और आजकल जो ट्राउजर्स का रिवाज है वो जाहिर है कि स्ट्रेच होता है, ऊपर होता है, तो टखने जुराबों से छुपाए। हमारे पाकिस्तानी या कल्चर में ये बात नहीं पता कि नमाज में पाँव की ऊपर की टॉप भी छुपनी चाहिए, नीचे भी छुप जाए तो बहुत है। तो आसान तरीका है कि जैसे आपने नमाज के दुपट्टे रखे हुए हैं, नमाज के सॉक्स भी रख ली थी, दैट्स इट। और याद रखिए कि खुशू की तैयारी नमाज के दौरान नहीं की जाएगी, ये नमाज से पहले होती है। मेहमान आ जाए तो फिर भेजते हैं किसी को, जाओ टमाटर भी ले और दही भी ले और थोड़ा गोश्त भी ले, पहले तैयारियां की होती हैं। नमाज से पहले वुजू, और वुजू से पहले लघवियात से अपने आप को दूर करना, ये तैयारी है नमाज की। ये जो लघवियात है ना, जब लघवियात आती है ना तो फिर खुशू चला जाता है, वो नाचती फुदकती तस्वीरें ही नमाज में याद रहेंगी। 15 मिनट का गैप क्यों होता है वुजू और नमाज के बीच में, ताकि पिछली स्लेट साफ हो जाए और अब तुम फील करो कि मैं अल्लाह के सामने आ रहा हूँ। तो खुशू हुलू का इलाज है, हुलूअन एंग्जाइटी। कल के बारे में इस पे बहुत बात हुई थी, आज जल्दी, आज इला, आज इला, आज इला को भी उजलत से ही मांगते हैं, भाग रहे हैं भाग रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं सारे, कभी आपने सोचो? इतना रश क्यों है रोड्स पे, टाइम क्यों नहीं है लोगों के पास, कुरान सुनने के लिए आने का वक्त क्यों नहीं, क्यों इतना कमा रहे हैं? हुलू है। किसी की बात बहुत ही अच्छी लगी, कई साल से जॉब कर रही हैं, खुद कहने लगी कि असल में मेरी और मेरे मियाँ की अभी नियत ही नहीं भरी, हालांकि मैं अब जरूरत कोई नहीं एक्स्ट्रा पैसों की, बच्चे पढ़ गए, शादियां भी हो गई। मैंने कहा इतनी जरूरत भी बहुत कम लोगों में होती है, कुरान सही पढ़ना ना आता हो, एक लफ्ज समझ ना आए तो आप कंगाल है ना, बैंकरप्ट है ना इस नाते से। और उधर आपके बैंक में $10,000 रखा है तो 15 हो जाएगा तो क्या फर्क है, तो 20 हो जाए तो 25, जितना ज्यादा छोड़ के जाएंगे उतना रोना आएगा छोड़ते हुए। हाय ये भी नहीं पहनना, ये भी नहीं पहनना, हाय बगैर पहने छोड़ जाऊं, हाय ऐसे कर दूं, हाय घर का ये कमरा तो मैंने एंजॉय नहीं किया। कितना रोते हैं लोग उन लोगों के लिए जो घर बनाए और ना रह सके और दुनिया से चले जाएं। किस चीज की कमी? आज दुआ कीजिए अल्लाह हमारी नजरें भर दे, पेट भर दे। जितने बड़े घर हैं उतना चलाने के लिए उतनी एफर्ट, जितनी दुनिया ज्यादा उतनी मुश्किल ज्यादा। तो लिखिए, खुशू का ताल्लुक लाइफस्टाइल से है और लाइफस्टाइल का ताल्लुक खुशू से है। आप जरा सा एक महीना अपनी जिंदगी में एक ब्रेक लें, 4-6 जोड़े मौसम से मुताबिक, 2 घर पहनने के, 2 बाहर के फॉर्मल और 1 आधा और जोड़ा जो भी आपको चाहिए, और ऐसे ही 1-2 जरूरत के बर्तन चीजें लेके 1 महीना जाकर किसी भी ऐसे जगह रहें कि बस आपके सामने की चीजें हो और आप हों। मैं कह सकती हूँ कि आपको लगेगा कि हम उमरे पे और हज पे आए हैं। हमारा लाइफ स्टाइल खुशू की वजह से बिगड़ता है और खुशू लाइफ स्टाइल की वजह से बिगड़ती है। और ये जो बात हमने पढ़ी ना मुशफिकून, तो लिख लीजिए, हम गुनाह करके भी इतना नहीं डरते जितना वो नेकियां करके डरते थे। अल्लाह हमें ऐसा दिल दे दे। और यहाँ अल्लाह की रहमतों की भी बात हुई है, तो कोई नेकी अपनी जात से काबिले कबूल नहीं है। ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये मेरा पढ़ाना, इसका ये स्टैंडर्ड इस काबिल नहीं है कि मेरी ये नेकी कबूल हो। और यही बात डरते हुए आपके लिए भी कह सकती हूँ जो आप पढ़ रहे हैं, और जिन एडमिन ने मेहनतें की हैं और जो इस वक्त भी चौकीदार बन के खड़े हैं, उनकी भी ये नेकी काबिले कबूल नहीं है, इल्ला ये कि अल्लाह आप पे और हम पे और हमारे एडमिन पे अपनी रहमत करते हैं। किसी को कितना भी अच्छा तोहफा खरीद के ले जाए देने के लिए, लेकिन जब आप उसके घर जाए उसकी जात को देखे, आप कहते हैं इसके काबिल नहीं है, ये मेरी टूटी फूटी नमाज जो मैंने फजर में पढ़ी थी ये काबिल है कि अल्लाह के पास जाए? हमारी तो नेकियों में भी इतनी गलतियां हैं, तो ये सिर्फ अल्लाह ने अपनी रहमतों से छुपाना है हमें। हाँ रहमत उस पे आती है जो ये कोशिशें करते हैं। लोग कहते हैं अच्छा जब फिर कबूल ही नहीं होनी तो करें ही ना, नहीं फिर तो आपको अल्लाह ने ठीक पकड़ना है, आप तो फिर सरकश हैं। हमारी आपकी ये छोटी छोटी कोशिशें ऐसे, जैसे आपका बच्चा कोशिश कर रहा है खाने की, इधर से उधर से गिरता है घुटता है, फिर आप कहते हैं लाओ मैं खिलाती हूँ, वो जूती पहनने की कोशिश कर रहा है उसे पहनी नहीं जा रही, आपको प्यार आ जाता है। आपकी मेरी नेकियों की ज्यादा से ज्यादा जो आप कह सकते हैं क्वालिफिकेशन है ना, वो क्या है कि अल्लाह को हम पे प्यार आ जाए, पर इस तो इनसे नहीं होना, जो ऐसे ही दे दो, ये पैसे जमा कर रहे हैं, इनसे कहाँ पैसे जमा होने, जो बाकी पैसे मेरी तरफ से डाल के इनका ये काम कर दो, वो मिसाल याद रखिए। फिर इसमें हमने व्हील ऑफ लाइफ पढ़ा है, कैसे नुतफे से लेके आगे गए और नबियों के साथ मुंह मारी, इसी बारे में आगे आ भी रही है। बशर को रसूल नहीं माना, अक्सर लोगों का ये मसला हुआ, आज ऑपोजिट है, मक्का वाले कहते थे तुम इंसान हो इसलिए तुम्हें रसूल नहीं मानेंगे। हैरत की बात देखिए, बशर को तो रसूल नहीं माना और हजर को खुदा मान लिया, पत्थरों को पूजने लगे और एक जीते जागते इंसान को झुठलाने लगे। और आपने ये जुमले भी अभी सुने और आगे सुनने भी होंगे कि दुनिया तो बस दुनिया की जिंदगी है, कितने लोग हैं जो तर्जुमा सुनते कि ये सारा कुछ सोच रहे थे, हम तर्जुमे में तो कांटों पे लगे होते हैं, टिक 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 कितना रह गया, और एक नजर हमारी घड़ी में, आराम से बैठिए, जो कर सकते हैं दी बेस्ट कीजिए, अल्लाह को आप पे प्यार आएगा। और ये जो लोग कहते हैं ना कि यू लो यू ओनली लिव वंस, ये मक्का वालों को भी मसला था, और आज भी कुरान को लोग इसीलिए झुटलाते हैं। देखिए आज कुरान है ना, कल तो रात थी, आप अभी इसमें आगे पढ़ने वाले हैं कि तौरात का मकसद नजूल क्या था, वो कुरान बताता है। अगर आज की जुबान में आप और मैं ये समझें तो तौरात का मकसद नजूल क्या था, तौरात ख्वानी, जब कुरान ख्वानी मकसद बन सकता है कुरान पढ़ने का, तो तौरात ख्वानी भी तो होगा ना, कितना अजीब लगा लफ्ज आपको सुन के। और यहाँ भागने की बात हुई है, साबिकून, तो लिखिए दौड़ने वाला अपने से आगे वालों को देखता है हमेशा, जाहिर है मैं दौड़ रही तो मुझे अपने से अगला दौड़ने वाला दिखेगा ना, पीछे वाले तो नहीं दिख रहे ना। हमें भी नेकियों की दौड़ में अपने से ज्यादा नेकियां करने वाले और हत्ता के सहाबे कराम को देखना है कि उनका अमल क्या है, फेथ इन एक्शन, अमल के नुक्ते, अपनी नमाजों में खुशू पैदा करना, बेकार कामों में वक्त को जाया नहीं करना, अपने किए हुए तमाम वादों को पूरा करना है, किसी किस्म की अमानत में खयानत नहीं करनी, हराम कामों की तरफ उठने वाले हर कदम को रोकना है, इंशाल्लाह फिर इनकलाब आएगा। अल्लाह हमारी नस्लों में इन खूबियों से मुत्तसिफ लोग भेज दे,